दिन भर 20 फरवरी सोमवार आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। किम जोंग नम की मौत को लेकर मलेशिया और उत्तर कोरिया में ठनी, मलेशियाई राजदूत को वापस बुलाया गया। नागालैंड में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, महिलाओं की घर से बाहर की भूमिका पर तेज हो गई है बहस।
बिल्कुल पेट्रियार्कल जो है वो सिचुएशन तो है और वेमेन रिजर्वेशन को लेकर की जो राइट मांग रहे
सब... उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का जायजा ले रहे नितिन श्रीवास्तव के साथ सुबह बनारस में नाव पर चुनाव की चर्चा।
मुझे लगता है कि विकास का मुद्दा यूपी के इलेक्शन से मिसिंग है और ओवरऑल डेवलपमेंट विकास का मुद्दा।
होंगी आपकी चिट्ठियां और खबरें खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। मलेशिया ने उत्तर कोरिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई की मौत के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। बीते हफ्ते किम जोंग नम की कुआलालंपुर में मौत हो गई थी। उत्तर कोरिया ने मारे गए व्यक्ति की पहचान पर सवाल उठाए हैं और उनका शव सौंपने की मांग की है। मलेशिया ने इस मामले में उत्तर कोरिया के राजदूत को भी तलब किया। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ब्रसल्स में कहा कि यूरोपीय यूनियन के लिए अमरीका की प्रतिबद्धता स्थायी है। यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने पेंस से बातचीत के बाद इसे बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन एकीकृत यूरोप और नेटो के लिए अमरीका का स्पष्ट सहयोग चाहता है। नेटो और ईयू को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर यूरोप के नेता चिंतित हैं। इराकी सेना मोसल एयरपोर्ट के करीब अबू सैफ कस्बे तक पहुंच गई है। इराकी अधिकारी मानते हैं कि यहां इस्लामिक स्टेट के सैकड़ों लड़ाके हैं। कस्बे पर अधिकार हासिल करने के बाद सेना का अगला लक्ष्य एयरपोर्ट पर अधिकार हासिल करना होगा। वहां जारी संघर्ष के बीच मानवाधिकार संगठनों ने शहर में फंसे हजारों आम लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है। इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहायता मिशन की विशेष प्रतिनिधि लीजा ग्रांडे ने कहा, फिलहाल जब से संघर्ष शुरू हुआ है हम ये सोच रहे हैं कि पश्चिम मूसल में रहे पहले से ही आम लोग मुश्किल में हैं। हमारा मानना है कि खाने के सामान और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमत आसमान को छू रही होगी। बिजली कटी हुई है, वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं कि बेसहारा परिवार अपने घर को गर्म रखने के लिए फर्नीचर जलाने के लिए मजबूर होंगे। आप जानते हैं कि जब पूर्वी मुसल में संघर्ष हुआ था तब लोगों की स्थिति बेहतर थी, पश्चिमी हिस्से में ऐसा नहीं है। ये थे संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को सीरिया में हुए एक बम धमाके में रूस के 4 रक्षा सलाहकार मारे गए। हमले में 2 लोग घायल भी हुए। ये सभी सीरिया में तैनात थे। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उनकी कार को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक सैनिक टियास एयरबेस से होम्स आ रहे थे। तुर्की में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान की सरकार के तख्ता पलट की कोशिश के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में संदिग्ध 47 लोगों पर अभियोग चलाया जा रहा है। अभियुक्तों में से ज्यादातर सेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन पर बीते साल जुलाई में उस होटल पर हमला करने के आरोप हैं जहां राष्ट्रपति रुके हुए थे। कोर्ट के बाहर राष्ट्रपति के समर्थक मौजूद थे। तुर्की की सत्ताधारी AKP पार्टी के सदस्य निहात ओज उर्क ने कहा, इस देश में रहने वाले सभी नागरिक तुर्की की प्रभुसत्ता के लिए खड़े हैं। इनमें विपक्षी दल भी शामिल हैं। ये सिर्फ एर्दोगान की बात नहीं है। ये थे तुर्की की सत्ताधारी पार्टी के सदस्य निहात के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिणी सूडान की सरकार और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस देश के कुछ हिस्से में हजारों लोग भुखमरी की स्थिति में हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में 6 साल में पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करने का ऐलान किया गया है। सरकारी घोषणा में जानकारी दी गई है कि करीब 10 लाख लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंचने के करीब हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये मानव निर्मित आपदा है। गृह युद्ध और आर्थिक स्थिति खराब होने से ऐसे हालात बने हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की मलेशिया में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला गहरा गया है। इसे लेकर उत्तर कोरिया और मलेशिया में ठन गई है। उत्तर कोरिया ने जहां मलेशिया पर उसे बदनाम करने का आरोप लगाने और राजनीतिक रूप से दक्षिण कोरिया को फायदा पहुंचाने की बात कही है, वहीं मलेशिया ने अपने राजदूत को वापस बुलाने के साथ ही उत्तर कोरियाई राजदूत को भी तलब किया है। मलेशिया का कहना है कि वो सिर्फ अपने देश के कानून का पालन कर रहा है। ब्यौरा बीबीसी संवाददाताओं ने भेजा है, आपको सुना रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
मलेशिया ने उत्तर कोरिया से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की मौत से उठे सवालों के बीच मलेशिया ने ये कार्रवाई की है। उत्तर कोरिया ने किम जोंग नम के शव को उन्हें सौंपने की मांग की है। किम जोंग नम को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जहर दे दिया गया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मलेशियाई सरकार ने उत्तर कोरिया के राजदूत कंग चोल को भी तलब किया है। कंग चोल ने पत्रकारों से कहा कि मलेशिया उनके देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
We have been respecting the Malaysian police and waiting with patience for their...
हम मलेशियाई पुलिस का सम्मान कर रहे हैं और धैर्य के साथ उनकी सही जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इसके उलट उन्होंने हमारी ओर संदेह की नज़रों से देखा है और जांच का रुख हमारी ओर मोड़ दिया है। अब तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं जिनसे लोगों के मन में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बारे में गलत छवि बन रही है। मलेशियाई पुलिस को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
उत्तर कोरियाई राजदूत का कहना है कि इस पूरे मामले में दक्षिण कोरिया को फायदा हो रहा है। मलेशिया से आ रही खबरों में किम जोंग नम की मौत के पीछे उत्तर कोरियाई सरकार का हाथ होने की बात कही जा रही है। किम जोंग नम कई वर्षों से उत्तर कोरिया से निर्वासित होकर रह रहे थे। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज से भी इस घटना के हत्या होने का संदेह उठता है। फूजी टीवी पर जारी इस फुटेज में दिख रहा है कि किम जोंग नम जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की तरफ एक महिला बढ़ती है, तभी पीछे से एक और महिला उन्हें धक्का देने के बाद अपना चेहरा कपड़े से पोंछती नजर आ रही है। इसके तुरंत बाद किम जोंग नम एयरपोर्ट के स्टाफ से मदद मांगते दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं को पकड़ा है, जिनमें एक वियतनाम की और दूसरी इंडोनेशिया की है। इंडोनेशियाई महिला ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे और उन्होंने इसे मजाक समझा था। पुलिस ने उत्तर कोरियाई नागरिक को भी पकड़ा है और उन्हें चार दूसरे लोगों की भी तलाश है जो घटना के बाद मलेशिया से बाहर जा चुके हैं। मलेशिया में उत्तर कोरियाई राजदूत कंग चोल ने कहा कि उनका मुल्क इस बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार को सहन नहीं करेगा। उत्तर कोरिया ने किम जोंग नम की मौत की संयुक्त जांच की मांग की है। कंग चोल ने कहा,
As far as all the happenings clearly show that this incident is politicized by Malaysia in collusion with South Korea.
अब तक का घटनाक्रम साफ तौर पर यह बताता है कि मलेशिया दक्षिण कोरिया से मिलकर इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहा है। हम आधिकारिक रूप से मलेशिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दें कि हमने संयुक्त जांच की मांग कर रखी है ताकि सच का पता चल सके।
उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक का कहना है कि पुलिस की जाँच में सच का पता चल जाएगा।
हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर बहुत पेशेवर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे पूरी निष्पक्षता से जो भी सच्चाई है उसे सामने लाएंगे। हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए हम उत्तर कोरिया को बदनाम करें, लेकिन हम निष्पक्ष रहेंगे और उन्हें ये समझना चाहिए कि हम मलेशियाई कानून का पालन करेंगे।
उत्तर कोरिया पर पहले भी अपने ही देश के कुछ नागरिकों की विदेशों में संदिग्ध हत्या के आरोप लगे हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर दिन भर निखिल रंजन के साथ।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और आइए अब रुख करते हैं भारत का, जहां उत्तर पूर्व में उथल पुथल मची हुई है। पिछले महीने भड़की हिंसा के बाद नागालैंड का सारा सरकारी कामकाज ठप पड़ा हुआ है। समाज में बहस चल रही है कि क्या महिलाओं को रसोई घर तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर समाज की तय की गई हदों को लांघकर अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आगे आना चाहिए। नागालैंड में बिगड़ते राजनीतिक माहौल के बीच मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
नागालैंड में ये बहस इसलिए है क्योंकि इस प्रदेश में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा मिले 50 साल हो गए हैं और आज तक यहाँ की विधानसभा में एक भी महिला विधायक नहीं रही है। अलबत्ता 1977 में रानो मैसे शाजिया सांसद चुनी गई थीं। पिछले महीने की हिंसा तब भड़की जब मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी। इस फैसले के खिलाफ आदिवासी समूह भड़क उठे और राज्य में जमकर हिंसा हुई जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के जानकार किसले भट्टाचार्य कहते हैं कि नागालैंड में अब भी बंदूक का ही बोलबाला है।
बिल्कुल, पेट्रियार्कल जो है वो सिचुएशन तो है और वेमेन रिजर्वेशन को लेकर वेमेन की जो राइट्स मांग रहे वो सब कुछ है, लेकिन देयर इज एन अंडरलाइंग करंट और वो अंडरलाइन करंट सिर्फ हम एलिगेशन के तौर पे कह सकते हैं क्योंकि उसका कोई सबूत हमारे पास है नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों को मानना है कि ये सारे जो वहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से जो सिचुएशन है बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर, वो सिचुएशन की शायद जो आर्किटेक्ट है वो नेफ्यू रियो है, क्योंकि नेफ्यू रियो जब स्टेट छोड़कर सेंटर आए थे तो उनको लगा था कि वो सेंट्रल कुछ पोजीशन उनको मिलेंगे मोदी सरकार में, लेकिन उनको कुछ पोजीशन वैसा दिया नहीं गया था, कुछ मिनिस्ट्री नहीं दिया गया था और वो तब से चाह रहे थे वो कि वापस वो स्टेट में आए।
कुमारी आलिम एक सरकारी स्कूल की टीचर हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को राजनीति में स्थान इसलिए भी नहीं मिल पाया है क्योंकि महिलाओं के संगठन कभी इसको लेकर संजीदा नहीं रहे हैं।
एसोसिएशन तो है मगर वो राइट्स के लिए फाइट नहीं करती है। वुमेन्स एसोसिएशन होती है मगर वो 33% के लिए तो शायद अभी तक फाइट नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि अगर वो 30 वुमेन्स रिजर्वेशन होती है तब तो वुमेन को इंसुपीरियर होना पड़ेगा, पता नहीं शायद उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। वुमेन को पॉलिटिकल इश्यू में शायद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तो वो लोग कंटेस्ट नहीं कर रही है। अगर करना चाहती है तो लास्ट टाइम एक किया था मगर वो कंटेस्ट करने की बात नहीं निकला, वो बहुत शायद कम था।
मगर नागालैंड पेज की संपादक मोनालिसा चंकीजा कहती हैं कि नागालैंड का समाज आज भी पुरुष प्रधान ही है जो नहीं चाहता कि महिलाएं घर के आंगन के बाहर भी निकलें।
हम लोग का पास ये डाउरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फेटिसाइड ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग का साइड में रेप, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन तो होता है
जी।
और उसका ऊपर में ट्रेडिशनली हम लोग को वो जो ट्रेडिशनल पार्लियामेंट है हम लोग का विलेज रिपब्लिक का, उस पे औरत को पार्टिसिपेट करने मना है, वीमेन आर नॉट अलाउड। नंबर टू, वीमेन आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट लैंड, तो वहाँ पे डिग्निटी और स्टेटस तो क्या हाई होगा। हाँ, हम लोग का मोबिलिटी है और विजिबिलिटी है, लेकिन मोबिलिटी और विजिबिलिटी जो एम्पावरमेंट नहीं है ना।
हालांकि पिछले महीने नागालैंड में भड़की हिंसा में सरकारी इमारतों के बर्बाद होने की वजह से सारा कामकाज रुका पड़ा है। सोमवार को सामान्य जीवन के धीरे धीरे पटरी पर लौटने के आसार नजर आने लगे हैं। नागालैंड पर नजर रखने वालों का कहना है कि अब सामान्य हालात तभी बहाल हो पाएंगे जब नागालैंड पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ से निष्कासित सांसद नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। कुछ समीक्षक इसे सत्तारूढ़ गठबंधन की अंदरूनी कलह के रूप में भी देख रहे हैं। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
बनारस की सुबह को लोग खूब याद करते हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव प्रदेश में चुनावी हलचल का जायजा लेते हुए जब बनारस पहुंचे तो उन्होंने भी ऐसी ही सुबह में राजनीति चर्चा करने की सोची। फिर क्या था, नितिन कुछ वरिष्ठ पत्रकारों, अध्यापकों और कुछ आम लोगों के साथ गंगा की लहरों पर नाव में सवार होकर निकल पड़े और शुरू हुई नाव पर चुनाव की चर्चा। नितिन ने सबसे पहले बात छेड़ी कि इस चुनाव में क्या जरूरी मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है।
काफी कुछ तो पसंद के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक मुद्दा जिसको कि बहुत शीर्ष पे रखा जाना चाहिए वो है विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा।
विकास का मुद्दा यूपी के इलेक्शन से मिसिंग है क्या?
मुझे लगता है कि विकास का मुद्दा यूपी के इलेक्शन से मिसिंग है और ओवरऑल डेवलपमेंट विकास का मुद्दा शीर्ष पे रखा जाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं,
विकास की बात नहीं हो रही है, मतलब विकास की बात आपको लगता है विकास की बात नहीं हो रही है। आप बताइए दादा, क्या विकास की बात नहीं हो रही है इस इलेक्शन में?
मुझे नहीं लगता कि विकास की बात नहीं हो रही है। सवाल है कि विकास से हम समझते क्या है। विकास एक तो जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनकी भाषा में विकास हो सकता है, एक विकास जो जनता है खासकर निचले तबके की जनता उसका जो विकास का परसेप्शन है उसके मुताबिक हो सकता है।
अभी किसकी बात हो रही है?
मैं समझता हूँ कि दूसरे जो मुद्दे हैं उनमें से विकास का मुद्दा, हर दूसरे मुद्दे में से विकास का मुद्दा झांक रहा है।
संजय पुगलिया साहब के पास चलते हैं, बहुत चुनाव कवर किए उन्होंने, बहुत से चुनावों का डिस्कोर्स बदला है पिछले 10-15-20 सालों में।
नेता का काम है और पार्टी का काम है वो कहे कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनकी रणनीति होती है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर हम अपनी बातों को अपील कैसे करें लोगों तक कि वो कंसोलिडेट करें और उनका जो कहते हैं ध्रुवीकरण हो जाए। हर चुनाव भारत में और खास करके ये यूपी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गरीब लोगों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम होता है हर चुनाव, जहां आप अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज बेचते हैं, विकास का नाम लेते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। चूंकि ये चुनाव तिकोना है तो मैं जिस चीज़ के लिए इसको वॉच कर रहा हूँ वो दो हैं। अनलाइक बिहार, क्या यूपी अभी भी धर्म के आधार पर पोलराइज होने के लिए वल्नरेबल है? इसी में समस्या खड़ी होती है बीजेपी जैसी पार्टियों के सामने जो जाति का मैट्रिक्स उनको सूट नहीं करता। तो यहाँ मोदी जी खुद चैलेंजर बन करके आए हैं और किसी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो चुनाव दरअसल राज्य के मुद्दों पर होने चाहिए, जहाँ अखिलेश ने परफॉर्म किया कि नहीं उसकी ज्यादा बातें होनी चाहिए।
मोदी जी की छाप जो है वो संजय को साफ साफ दिखती है इन चुनावों में, और एक तरह से सुपर इम्पोजिशन की बात की उन्होंने। डॉक्टर ओम प्रकाश, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, ये चुनाव क्या व्यक्ति विशेषों का चुनाव है, करिश्मा का चुनाव है, या दरअसल बिजली, सड़क, पानी, प्रदेश में हाईवेज, बच्चों को एजुकेशन, या जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा महिलाओं को बराबरी?
मुझे लगता है कि मुद्दे कई हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक लेवल पे हमें फेडरल चुनाव में और राज्य स्तर के चुनाव में अंतर करके देखना चाहिए। निश्चित रूप से अभी वर्तमान में राज्य चुनाव है, और इस रूप में पिछले 5 सालों में जो पिछले सरकार ने काम किए हैं उन कामों के आधार पे वो कैसा परफॉर्म की है ये एक मुद्दा होना चाहिए।
है वो मुद्दा या
मुझे लगता है कि वो मुद्दा थोड़ा सा हाशिए में चला गया है, तो कहीं ना कहीं वो उसका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है
और पर्सनालिटी पे जो है एक उस पे चुनाव हो रहा है। हमने मोदी जी की बात की, अखिलेश जी की बात की, आप बताइए, आप बनारस में रहती हैं, महिला मुख्यमंत्री थी और पार्टी को चलाती हैं, एक ही महिला है, क्या क्या लगता है कि महिलाओं को क्या कभी मायावती से उम्मीद नहीं रही प्रदेश में?
नहीं, बिल्कुल रही है उम्मीद, लेकिन जब तक वो हमारे लिए कुछ करती या उनके राज्य में, ठीक है उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बाकी चीजें उनके राज्य में वो पूरे विकास का मुद्दा लेके कभी नहीं आई, और महिलाओं की भी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक वर्ग की बात की थी जो कि उन्होंने दलितों की बात की, और दलितों को उन्होंने जरूरत से ज्यादा, इतनी ज्यादा उन्होंने सुविधाएं दे दी कि एक समस्या समाज में एक और हो गई कि हमारे पास और कामों के लिए लोग नहीं रह गए, और सिर्फ एक वर्ग को प्राथमिकता देना ये कहीं से सही नहीं। विकास का मुद्दा, गरीब अगर जनता के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें वो सारी जातियां आनी चाहिए जो कि नीचे की जाति की हैं।
इसी से जुड़ा एक सवाल बहुत संक्षेप में, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में एकदम बहुत ही मिनिमल है यूपी में खासतौर से, कितना डिसअपॉइंटमेंट है, कितना सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है आपको?
नहीं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों को मतलब कि एक बार बहुत ज्यादा जैसे लगता है कि अब हम लोग जैसे पिछले 2.5 सालों में वुमेन्स हम लोग बहुत ज्यादा एक उभर के हम लोगों की स्थिति सामने आई है, हमको चर्चाओं में शामिल किया जा रहा है कि हम भी क्या सोचते हैं, अभी तक हम इस तरह के मुद्दे नहीं हुए थे, हमारे मोदी जी के आने के बाद हम लोगों को इस तरह के एडवांटेज मिलने लगे, ये हमारा
लेकिन 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 उन्हीं मोदी जी की 2.5 साल से सरकार है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे क्यों खामोशी?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोनों में है, लेकिन कम से कम विकास के मुद्दे पे हम औरतों को सामने लाया जा रहा है, हमारी बात की जा रही है, ये भी हम एक शुरुआत मान सकते हैं।
तो ये थी वो चर्चा जो बनारस में नाव पर हो रही थी गंगा की लहरों पर। इसका एक छोटा संस्करण हमने आपको सुनाया। अगर आप ये पूरी चर्चा सुनना चाहें तो बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर आइए और चर्चा सुनने के साथ देखने का भी मजा लीजिए। आज सोमवार है और हमारे कई श्रोता इंतजार में हैं अपनी चिट्ठियों के, तो लीजिए इंतजार खत्म। आपकी राय लेकर आ गए हैं राजेश जोशी और सुशीला सिंह।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं सुशीला सिंह।
मेरा भी नमस्कार। और सबसे पहला खत मैं लेना चाहूंगी भजनलाल मेघवाल का, जो मोरिया लोहावट जिला जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं कि मैं बीबीसी का नियमित श्रोता हूं और मुझे बीबीसी हिंदी सेवा के सभी प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इनको एक शंका है। ये कहते हैं कि हिंदी प्रसारण का जो समय धीरे धीरे कम किया जा रहा है, क्या हिंदी सेवा को बंद तो नहीं किया जाएगा?
मेघवाल साहब, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दो प्रसारण जो अतिरिक्त थे उनको बंद किया गया है, लेकिन बीबीसी प्रसारण, नमस्कार भारत और दिन भर बदस्तूर चलते आपके सामने है ही है। हम रोजाना सुबह शाम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। मेरी गुजारिश ये है आपसे सुशीला जी, अब अगर एक चिट्ठी ले लें तो अच्छा है
जी। पर ये बहुत खास चिट्ठी होगी क्योंकि ये तमिलनाडु मदुरई से हमें लिखी है। इनका नाम है एस षणमुग सुंदरम, जिन्होंने अंग्रेजी में ऑब्वियसली
मदुरई से तमिलनाडु से लिखते हैं। क्या लिखते हैं
ये? इन्होंने लिखा है कि मैं हिंदी सीख रहा हूँ और ये मेरी राष्ट्रीय भाषा है। बीबीसी हिंदी सेवा से मुझे हिंदी सीखने में मदद मिलती है। आपकी वेबसाइट पर वीडियो मेरी जानकारी बढ़ाते हैं।
षणमुगम साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने चिट्ठी लिखी, हिंदी सीख रहे हैं। काश मैं भी आपको ऐसा कह पाता कि मैं तमिल सीख रहा हूँ। दुर्भाग्यवश मैं तमिल नहीं सीख रहा हूँ, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर रहेगी और आप हिंदी के कार्यक्रम सुनते रहें, इसी तरह लगातार चिट्ठियाँ भी लिखते रहेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा।
एक और चिट्ठी है नागेंद्र कुमार कुशवाहा की, पिपराही बाजार जिला शिवहर बिहार जी। इन्होंने तारीफ की है दुनिया जहाँ की, जिसे प्रस्तुत किया था मोहनलाल शर्मा ने। ये लिखते हैं कि जर्मनी में हो रहे राष्ट्रपति के चुनाव पर केंद्रित ये दुनिया जहाँ उन्हें काफ़ी पसंद आया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको दुनिया जहान कार्यक्रम पसंद आया, हमारी कोशिश यही रहती है
जी। बंगलोर से शिबली रब्बानी लिखते हैं कि वो 25 बरस से जो है बीबीसी हिंदी सेवा सुन रहे हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने इंटरनेट पर इस सेवा को सुनना शुरू किया है। इनका कहना है कि इनकी दिन की शुरुआत ही जो है नमस्कार भारत और शाम जो है वो दिन भर से होती है।
बहुत
और इन्होंने ब्रजेश उपाध्याय की डायरी और आपकी और सलमान रावी दिव्यार या मोहनलाल इन सब की शैली की तारीफ की है।
मैं ये देख रहा हूँ कि तमिलनाडु से लेके बेंगलोर से लेके और कहाँ कहाँ से हमारे श्रोता हमें चिट्ठियाँ लिखते हैं। इतना अगाध प्रेम और इतना भरोसा हम पर जताते हैं और हक भी जताते हैं, और जब हमारी आलोचना करते हैं तो हक के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।
और एक और तारीफ भरा खत है, ये है संदीप कुमार का इजरा से। ये लिखते हैं कि आपके सारे प्रोग्राम जो हैं एक से एक बढ़कर होते हैं और रेहान साहब जो प्रस्तुत करते हैं विवेचना, मैं ज़्यादा तरजीह देना पसंद करूँगा जो जानकारी से इस भरपूर होता है ये कार्यक्रम।
ये तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। रेहान साहब जिस तरह की विवेचना प्रस्तुत करते हैं, हमारे श्रोता तो उसकी तारीफ करते ही हैं। हम लोग खुद इंतजार करते हैं कि शुक्रवार को उनकी विवेचना सुने
जी। और आप जैसे श्रोता जानते ही होंगे कि बीबीसी हिंदी सेवा ने अपने बहुत सारे संवाददाता यूपी भेजे हैं, तो समीर आत्मज मिश्र के लिए ही एक खत भेजा है फारूक अब्दुल्ला फिजा ने लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से जी। इन्होंने तारीफ की है समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्टिंग की और साथ ही जिक्र किया है पूर्व संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी जी का और कहा है कि
इनकी रिपोर्टें बहुत पसंद आई हैं
जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन की खबरें हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया। सुशीला, मैं कुछ ईमेल लेना चाहता हूँ अब, क्योंकि सब ईमेल्स तो मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन नाम ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। त्रिभुवन चौबीसा ने हमें ईमेल लिखा है और ये 75 वर्ष पूरे होने पर हमें बधाई देते हैं। और यशविनी पुंडीर ने बीबीसी की आलोचना की है, वो कहती हैं कि बीबीसी हिंदी के संवाददाताओं की भाषा शैली और रिपोर्टिंग का स्तर बहुत निराशाजनक हो गया है। आपकी रिपोर्टों में अगर बीबीसी नहीं लिखा हो तो कोई भी उसे किसी गैर पेशेवर मीडिया रिपोर्ट की तरह लेगा, ये शिकायत इनकी है। एक और नाम है वीरा राम बिश्नोई, जम्भेश्वर नगर चौहट्टन जिला बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं। इनको नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्टें बहुत पसंद आ रही है। इकबालपुरा कोकरनाग जम्मू कश्मीर से शौकत तांत्रे ने लंबा ईमेल अंग्रेजी में लिखा है और ये कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के ज़माने से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब अपने बच्चे को बीबीसी सुनाने में हिचकता हूँ क्योंकि इससे हिंसा की, हत्या की, बलात्कार की खबरें बहुत होती हैं। کبھی کبھی ان کو یہ بھی شکایت ہے کہ بی بی سی اردو پاکستان پرست اور بی بی سی ہندی بھارت پرست رکھتا ہے. شوکت تانتری صاحب کہ بی بی سی ہے, نہ تو وہ ہندوستان پرست ہے, نہ پاکستان پرست ہے, نہ وہ امریکہ پرست ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم صرف سچ کے پرست ہیں, سچ کے حامی ہیں, ستیہ پرست ہیں. جو بھی رپورٹیں ہم آپ کو سناتے ہیں, ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس میں سچ کہیں دھومل نہ ہو. مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اب ہم بہت ساری چٹھیاں نہیں لے پائیں گے, تو میں چلتے چلتے شروتاؤں کو پتہ بتا دیتا ہوں. بی بی سی ہندی سیوا, پوسٹ باکس 3035, نئی دلی 110003, اور ای میل سے لکھنا چاہیں تو hindi.letters@bbc.co.uk.
نمسکار.
تو اگلی بار آپ بھی ضرور چٹھی لکھیے گا. اور اب دن بھر میں سنتے ہیں کھیل سماچار. آج ممبئی میں انڈین پریمیئر لیگ یعنی آئی پی ایل کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی کا دن تھا. کون کتنے میں بکا اور کس کو خریدار نہیں ملے, اس کے ساتھ ہی کھیل کی کچھ اور خبروں کے ساتھ سمرن پریت کور.
کھیل کی دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمرن پریت کور. آئی پی ایل کے 10ویں سیزن میں کون سے کھلاڑی کس ٹیم کے لیے کھیلیں گے, یہ طے ہوا جب بنگلورو میں آئی پی ایل 2017 کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی ہوئی. اس آکشن کی کچھ ہائی لائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. رائزنگ پونے سپر جائنٹس نے بین سٹوکس کو 14.5 کروڑ روپے میں خریدا. انڈین پریمیئر لیگ کے سارے سیزنز کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ریکارڈ پرائس ہے کسی بھی ودیشی کھلاڑی کے لیے. جہاں انگلینڈ کے بین سٹوکس اب کھیلیں گے رائزنگ پونے سپر جائنٹس کے لیے, وہیں انگلینڈ کے ہی تائمل ملز کھیلیں گے رائل چیلنجرز بنگلور کے لیے. آر سی بی نے تائمل ملز کو 12 کروڑ روپے میں خریدا. انگلینڈ کے بین سٹوکس کے کھیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں ورشٹھ کھیل پترکار ایاز میمن.
وہ بیٹنگ بھی زبردست کرتے ہیں, گیند بازی بھی اچھی کر لیتے ہیں, ریورس سوئنگ بھی کرتے ہیں. حال ہی میں انڈیا میں کھیلے ہیں تو کنڈیشنز کو اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت ہی بریلینٹ فیلڈر بھی ہے. ایک اگر پرابلم ہے کچھ بین سٹوکس کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ پورا سیزن نہیں کھیل پائیں گے. ایک ہی سیزن کے لیے یہ آکشن ہے. اگلے سال سب پلیئرز جو ہے وہ پھر سے آ جائیں گے, ایک کامن پول ہو جائے گا آکشن کا, اور ٹیم جو ہے جو بالکل علیحدہ ہو جائے گی. ہر فرینچائز کی یہی کوشش کہ انہیں اپنے پورے جو پیسے خرچے کر رہے ہیں اس کا کچھ ریٹرن امیڈیٹ ملے, کیونکہ اس سیزن میں جیسے یہ 10ویں سیزن ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر سے آکشن ہوگا.
بھارت کے کرن شرما رہے بھارت کے سب سے مہنگے کھلاڑی. کرن شرما جہاں اب کھیلیں گے ممبئی انڈینز کے لیے, وہیں ٹی ناٹراجن کو کنگز 11 پنجاب نے 3 کروڑ روپے میں خریدا. افغانستان کے کرکٹرز محمد نبی اور راشید خان نے اتہاس رچا. آئی پی ایل میں چنے جانے والے یہ افغانستان کے پہلے کرکٹرز ہیں. ویسے اس بار افغانستان کے 5 کھلاڑی نیلامی میں شامل تھے. یہ دونوں کھلاڑی کھیلیں گے سن رائزرز حیدرآباد کے لیے. پیس بولرز ٹرینٹ بولٹ اور کسیکو رباڈا کے لیے یہ ایک اچھا دن ثابت ہوا. اب بات پاکستان کے شاہد افریدی کی. 36 ورشیہ شاہد نے کرکٹ کے سب سے چھوٹے فارمیٹ یعنی T20 کے ساتھ ہی انتراشٹریہ کرکٹ کو الوداع کہہ دیا ہے. یہ تیسرا موقع ہے جب شاہد افریدی نے سنیاس کی گھوشنا کی ہے. سب سے پہلے سال 2010 میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنے کی گھوشنا کی تھی. 2015 میں شاہد نے ون ڈے کرکٹ کو گڈ بائے کہا تھا. اور جاتے جاتے بات گولف کی. امریکہ کے ڈسٹن جانسن بن گئے ہیں دنیا کے سرو شریشٹھ گولف کھلاڑی. 32 ورشیہ جانسن نے جیتا جینیسس اوپن. اسپورٹس کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی.
تو یہ تھے کھیل سماچار, اور اب کارکرم میں آپ سے ودا لینے کا وقت آ گیا ہے. تو واتسل رائے سے سن لیتے ہیں پرمکھ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. ملیشیا نے اتر کوریا سے اپنے راجدوت کو واپس بلا لیا ہے. اتر کوریا کے نیتا کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کی موت کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ بنا ہوا ہے. امریکی اپراشٹرپتی مائک پینس نے برسلز میں کہا کہ یوروپی یونین کے لیے امریکہ کی پرتیبدھتا استھائی ہے. عراقی سینا موسل ایئرپورٹ کے قریب ابو سیف قصبے تک پہنچ گئی ہے. وہاں جاری سنگھرش کے بیچ مانوادھکار سنگٹھنوں نے شہر میں پھنسے ہزاروں لوگوں کو لے کر چنتا ظاہر کی ہے. روس کے رکشا منترالے کے مطابق گروار کو سیریا میں ہوئے ایک بم دھماکے میں روس کے 4 رکشا سلاحکار مارے گئے ہیں. ترکی میں راشٹرپتی رجب طیب اردوان کی سرکار کے تختہ پلٹ کی کوشش کے معاملے میں سنوائی شروع ہو گئی ہے. دکھنی سوڈان کی سرکار اور سنیکت راشٹر کا کہنا ہے کہ اس دیش کے کچھ حصوں میں ہزاروں لوگ بھکمری کی استھتی میں ہیں. زمبابوے کے راشٹرپتی رابرٹ مگابے نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی راشٹرپتی کے طور پر خود کو ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. سرکار کے ادھیکار والے ہیرلڈ اخبار سے بات چیت میں مگابے نے کہا کہ وہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی نیتی کی سراہنا کرتے ہیں. بی بی سی سماچار.
प्रमुख समाचार सुनायाबाद से ले राय ने और आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। आपसे कल सुबह नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।